जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
ओम शांति। हमारे बीच में फिर से छोटे लाल भाई आए हैं, क्योंकि उस दिन थोड़ा बहुत सुनाया था, आज पूरा क्लास करेंगे और सारे अनुभव इकट्ठे करेंगे। अनुभव बताए ना, एक सबसे बड़ी पावर जो है छोटे लाल भाई हमें कराएंगे, तो भरपूर होके जाएंगे। लास्ट एंड बेस्ट क्लास सुनेंगे अभी। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी बट्टी वाले और जो भी सेवाधारी यहाँ बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, मधुवन में किस लिए आते हैं? अनुभव करने और भरपूर होने, और इसके बहुत सारे जवाब हैं, एक नहीं, बाबा से मिलने, और ये हमारा एयरपोर्ट है, और बेहद परिवार से मिलने। ऐसी बात बताओ जिसमें बहुत सारी बातें आ जाएं, नशे की और खुशी की, साकार बाबा की वाइब्रेशन अनुभव करने। हाँ, अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती, देखो पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने के लिए हम, तो अब हमें और भी बातें हैं इसमें बहुत सारी। अब हमें ये देखना है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम यहाँ आए हैं या बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, क्या उस लक्ष्य में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? केवल लक्ष्य लेना ही, रख लेना ही सब कुछ नहीं है, फर्स्ट वो भी जरूरी है, लेकिन उसमें हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, मेरे पुरुषार्थ में निरंतर उन्नति हो रही है, ये अपने आप में चेक करने की बात है। तो किस आधार से चेक करेंगे उसकी कुछ एक बातें और अनुभव। तो उसके लिए जितना जितना हम पुरुषार्थ में, हमारे पुरुषार्थ में उन्नति होती जाएगी, तो उतना उतना हमारा बाबा से अटूट प्यार बढ़ता जाएगा। देखो याद किसकी सहज आती है? जिससे प्यार होता है, वहां याद करना नहीं पड़ता, याद स्वतः ही आती है। तो हम सब कहते तो हैं हमारा बाबा से प्यार है, इसमें कोई शक नहीं, प्यार तो है, तभी तो यहां आए हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करके चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा ऐसा प्यार हो जो हम उसे अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लें, फिर हम जो संकल्प करेंगे वही होगा, क्योंकि उस स्थिति में हमारे साथ उसकी सर्व शक्तियां कार्य करने लगती हैं, और वहां फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। गोपियों का गायन है ना, क्या था उनके पास, गोपियों के पास क्या था? प्यार ही तो था ना, एक उन्होंने भगवान को अपने प्यार की रस्सी में बांध लिया था। तो हमारा भी बाबा से ऐसा प्यार हो तो वहां स्वतः ही उसकी याद आए, और जहां उसकी याद है तो वहां जो संकल्प करेंगे वही होगा। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, कैसे प्यार बढ़े वो तो अलग बात है, उसकी तो बहुत सारी बातें हैं, जो भी नियम मर्यादाएं हैं उनका पूर्ण पालना करके हम चलें, हर श्रीमत की पालना हो। तो एक बार हम कहीं जा रहे थे, तो 10 दिन पहले ही प्रोग्राम फाइनल हुआ था, जाने की डेट के 10 दिन पहले ही दादियों से राय सलाह करके वो प्रोग्राम फाइनल हुआ। अब 10 दिन पहले तो क्या रिजर्वेशन मिलेगा, उस समय जब ये, जब का ये अनुभव, उस समय 4 महीने पहले हो जाता था रिजर्वेशन, अभी 2 महीने पहले होने लगा ट्रेन का रिजर्वेशन। तो हमने रिजर्वेशन वाले भाई को कहा, मैंने कहा भाई कुछ रिजर्वेशन का हो सकता है? बोले भाई साहब अब 4 महीने पहले हो जाता है, 2 महीने पहले क्या मिलेगा? तो मैंने कहा तत्काल में ट्राई करो। बोल तत्काल की मैं गारंटी नहीं ले सकता, मैं ट्राई करूंगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है आप उधर ट्राई करो, हम बाबा से ट्राई करते हैं। तो हम बाबा के कमरे में गए और हमने बाबा को सारी बात बताई। मैंने कहा बाबा ये देखो प्रोग्राम दादियों की राय से ही बना है, और मुझे वहां सेवा पर जाना है, और कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, आपने रिजर्वेशन करवाना है। ऐसे हमने अधिकार के रूप में बाबा को दिल से याद कर कहा। 10 मिनट योग करने के बाद मेरे सामने लिखित में आ जाता है कि रिजर्वेशन हो गया है, S3 में 26 नंबर सीट है। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर अगले दिन उस भाई को हमने फोन किया, मैंने कहा भाई कुछ हुआ? तो वो भी यही कहता है रिजर्वेशन हो गया है, S3 में 26 नंबर सीट है। ये है प्यार और अधिकार की बात। तो ऐसा हमारा बाबा से प्यार हो तो वो हम जो संकल्प करें वो प्रैक्टिकल होता चला जाए। और इसके साथ साथ जैसे हम अपने पुरुषार्थ में उन्नति करते जाएंगे तो आत्मा के स्वभाव संस्कारों में इजी, सरलता, सहज, मोल्डिंग पावर, जैसा समय वैसे हम अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे, इजी नेचर बनती चली जाएगी। नहीं तो कई बार व्यक्ति कहता है भाई इसके साथ मैं नहीं रह सकता, ऐसे में नहीं चल सकता, ये मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा आदमी, ऐसी आत्मा फिर पुरुषार्थ में भी निरंतर आगे बढ़ पाए वो पॉसिबल कमी हो पाता है। क्योंकि जीवन के हर कदम कदम पर परिस्थितियां, समस्याएं, विघन ये सब आएंगे, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताबें चुक्त होने के लिए तो आएंगे। अगर हम उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सके या अपने आप को मोल्ड नहीं कर सके या परिवर्तन नहीं कर सके तो उनमें रह के चलना, योग युक्त स्थिति बनाकर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। तो हमारी नेचर ऐसी हो जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे, तो हमारा स्वभाव सरल इजी नेचर बनता चला जाएगा। जैसा समय वैसे अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आई उसके अनुसार सेट कर लेंगे, उससे मन से स्वीकार कर लेंगे तो वहां सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। अब एक जगह हम गए तो थोड़ा देरी से पहुंचे, गाड़ी खराब हुई, ठीक कराई तो एक डेढ़ घंटा उसमें लग गया, तो 10:30-11 बजे के रात के एक सेंटर पर पहुंचे, भोजन किया, 11:30 बज गए। बहन जी कहती है सेंटर पर रहने की जगह कम है तो भाई के घर जाना है सोने के लिए। ठीक है जी, भाई के घर गए, कोई बड़ा ऑफिसर था भाई, नया ही घर बनाया था, तो गए वहां गए और वो तो फुल एसी चला के, पंखा भी फुल स्पीड से चला के, और थोड़ी देर में खर्राटे मारने लगा, सो गया। अब अपने को तो एसी भी सूट नहीं होता और आवाज में तो बिल्कुल नींद नहीं आती, तो अभी क्या करे भाई। अब वो बड़ा व्यक्ति, बड़ा भाई, तो अब कुछ कह भी नहीं सकते हम। तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकल के देखा तो एक सोफा पड़ा हुआ था, चादर अपने पास थी, चादर निकाली, सोफे बिछाई और एक नंबर पर हल्का सा पंखा चला के और सो गए। तो कहने का भाव है जहां जैसी परिस्थिति है, जैसे सिचुएशन है, वैसे हम अपने आप को मोल्ड कर लेंगे तो हर समस्या नहीं लगेगी, वहां इजी हो जाएगी आपके लिए, सरल हो जाएगी। एक जगह गए हम तो गर्मी का दिन था, तो बहन जी बोलने लगी भाई जी हमारे यहां तो एसी नहीं है। मैंने कहा बहन जी एसी की जरूरत नहीं है अपने को, हम तो पंखा भी हल्का था एक नंबर पर ही चलाते हैं। तो फिर तो बहन जी हल्की हो गई, तो और गर्मी बहुत थी, 40 डिग्री टेम्परेचर, और रात को 10:30-11 बजे करीब लाइट भी चली गई। अब आप सोचो 40 डिग्री टेम्परेचर और लाइट चली जाए तो क्या हाल होगा, है लोग बड़े परेशान। और अपनी ऐसी नेचर थी जैसा समय जैसी सिचुएशन वैसे मोल्ड कर लो, मन से उस सिचुएशन को स्वीकार कर लो कि जो हो रहा है यही ठीक है, तो उसमें भी अपने को नींद आ गई, आराम से सो गए। तो ऐसी हमें अपनी नेचर बनानी है जहां जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे हम अपने आप को मोल्ड कर लेंगे तो हर परिस्थिति में आप अपनी स्थिति को एक रस बनाकर रख सकेंगे। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम पुरुषार्थ में उन्नति होती जाएगी उतना उतना हम कहीं भी इस चीज का प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। ज्ञान तो सबके पास है, बाबा मेरे साथ है, वो चला रहा है, वो करा रहा है, ये तो सबको ज्ञान है, लेकिन इस चीज का प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे हम कि वो सर्वशक्तिवान सदैव मेरा साथी बनकर साथ निभा रहा है, निरंतर है वो, उसकी महसूसता, उसके एक उपस्थिति हमें हर कदम कदम पर अनुभव होगी। वो तो है हमारे साथ, हर बच्चे का साथी बनकर साथ दे रहा है, लेकिन हम उस चीज को कितना अनुभव करते हैं ये देखने की बात है अपने आप में। तो ये अनुभूति हमें निरंतर अपने मन में या इमर्ज रूप में रख के चलनी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, वो हर घड़ी हर पल हमारा साथी बनकर साथ है हमारा। कहीं भी कोई बात समस्या परिस्थिति आए, बस उसको दिल से याद कर बता दो, बाबा ये बात ऐसे ऐसे। आप सबने सुना होगा बाबा ने ये बात खुद कही है कि बच्चे कोई विघन परिस्थिति यदि तुम्हारे सामने आए, यदि तुम दिल से बाबा को याद कर कहेंगे प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। और होता है एक प्रैक्टिकल का अनुभव। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम दिल्ली से आना था हमको, तो मैंने एक दिन पहले ही मैंने संकल्प तो आ रहा, मैंने कहा मैं मोबाइल में देखूं भाई मेरा कौन सा नंबर कोच है टिकट का देखूं, तो एक दिन पहले ही चेक किया, थोड़ा बिजी बाहर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर एक दिन पहले चेक किया तो मेरे पास टिकट ही नहीं है ट्रेन का। तो जिन भाइयों से मैं करवाता हूं उनको फोन किया, वो कहते भाई साहब हमारे पास तो, हमने तो आपका नहीं किया, हमारे पास तो नहीं है टिकट, दोनों ने मना कर दिया। अब ये तो गड़बड़ हो गया भाई, टिकट ही नहीं है तो यात्रा कैसे करेंगे। तो एक भाई था और जो रेलवे में ऑफिसर था, उसको फोन किया, मैंने कहा भाई आज की डेट का कुछ टिकट का हो सकता है, मुझे आबू जाना है दिल्ली से। बोल भाई साहब आज के डेट में तो किसी ट्रेन में खाली नहीं है। तो मैंने कहा कल की डेट में चेक करो, तो उसने कल की डेट में चेक किया, तो बोल भाई साहब और किसी ट्रेन में तो नहीं है, लेकिन एक राजधानी ट्रेन में छोटेलाल नाम से ही दिल्ली से आबू की ही रिजर्वेशन है एक सीट। तब मैंने कहा भाई ये रिजर्वेशन तो है लेकिन मेरे पास तो टिकट भी नहीं है, तो ये कैसे फाइनल हो, को मेरी है या दूसरा कोई भी छोटेलाल हो सकता है। हाँ तो बोल नहीं भाई साहब आपकी होगी, 65 साल उम्र है, 65 साल आपकी उम्र है, है? लेकिन जब टिकट नहीं है तो कैसे फाइनल होगा इस चीज का। तो बोल टिकट में निकलवा के भेज देता हूं, तो उसने टिकट भी निकलवा के भेज दी। फिर भी जब तक गाड़ी में ना बैठे कोई दूसरा ना आ जाए तब तक कैसे फाइनल हो इस बात का है। तो मैं उस जिस दिन निकलना था उसी दिन एक दोपहर को सेंटर पर क्लास करा रहे थे, तो वहां बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा अब देखो आपके बच्चों की सेवा में आए हैं, अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, मुझे ट्रेन में बैठने के लिए सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमने बाबा को दिल से याद कर कहा। तो बड़ा फोटो था 4x5 का ऐसा लगभग, तो उसके नीचे एक कोने में छोटा सा फोटो बाबा का ही रखा हुआ था, उस पर लिखा था बच्चे आप चिंता क्यों करते हो मैं बैठा हूं। एक मिनट में जवाब मिल गया उसके, बड़े हल्के हो गए, खुशी हुई। मैंने कहा बाबा बैठा है तो फिर और क्या करना है, सब ठीक हो ही जाएगा। तो फिर भाई एक हमको गाड़ी में छोड़ने के लिए गए दिल्ली स्टेशन पर, तो वहां गए तो फिर मैंने जब जा रहे थे गाड़ी में बैठ के कार में, तो तभी बाबा को याद कर कहता जा रहा कि मैंने कहा बाबा जिस कोच में मैं बैठूं मेरे सामने कोई बीके भी होना चाहिए, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कम से कम उनके साथ एडजस्ट तो कर सकते हैं है? तो स्टेशन पर पहुंचे तो एक बीके मिल गया, तो उससे पूछा भाई कौन सा नंबर कोच है आपका, बोल A1 में 3 नंबर है। बोल आपका भाई साहब, मैंने कहा मेरा तो ऐसे ऐसे बात है, मैंने सारी बात बताई और लेकिन फिर भी सीट नंबर तो है A1 में 1 नंबर, तो वो इधर हम इधर आमने सामने सीट मिल गई। तो फिर ट्रेन आई, बोल भाई साहब आपका ही होगा आप चिंता नहीं करो, बाबा बैठा है आपको सीट मिल जाएगी। ट्रेन आई, ट्रेन में बैठ गए, 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले ही लग जाती है, वहीं से चलती है। तो बैठ गए, बाबा को याद करते रहे, मैंने कहा बाबा देख लेना कोई दूसरा छोटेलाल नहीं आना चाहिए सीट पर। तो 15-20 मिनट ट्रेन रुकी और फिर जब टाइम हो गया तो चल पड़ी, तब थोड़ा तसल्ली आई। फिर दिल्ली में एक और दूसरी जगह भी रुकती है, वहां से भी सवारी बैठती है, तब तक थोड़ा सा रहा, मैंने कहा फिर भी बाबा साथ है, तो मैंने कहा बाबा ने कह दिया मैं बैठा हूं तो फिर सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। वहां भी रुकी दो मिनट और चल पड़ी। फिर बाबा को बहुत याद किया, थैंक्स दिया और उसी सीट पर बैठकर हम आ गए, क्योंकि टिकट तो हमारे पास था ही। अब किसने कराया क्या हुआ वो तो बाबा जाने भाई, लेकिन हमको गाड़ी में बैठने के लिए सीट मिल गई। तो ऐसे उस सर्वशक्तिवान को यदि हम साथी बनाकर चलते हैं तो कदम कदम पर उसकी अनुभूति, उपस्थिति की महसूसता आपको होती रहेगी। तो ऐसे ज्ञान तो आप सबको है, लेकिन हम उसको यूज कर चलें प्रैक्टिकल जीवन में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, समस्याओं में, तो आपका एक तो उस पर निश्चय बढ़ेगा और इस बात का अनुभव बढ़ेगा कि वो सर्वशक्तिवान सदैव मेरा निरंतर साथी बन के साथ निभा रहा है। एक भाई और अनुभव मुझे याद आया। एक भाई ट्रेन में यात्रा कर रहा था, कहीं मेला लगा था तो सेवा पर जा रहा था, और जहां से वो बैठा वहां से ही उसी ट्रेन में रात के 10:30-11 बजे होंगे तो 3-4 कुछ लुटेरे भी चढ़ गए, और थोड़ी दूर गाड़ी चलने के बाद ट्रेन और चारों तरफ खिड़की के पास खड़े होकर जोर से बोलने लगे कि आप लोगों के पास जो भी है सब निकालो, नहीं तो एक-एक को हम खत्म कर देंगे, सबको पिस्तौल दिखाकर बोलने लगे जोर से। अब लोगों ने सोचा भाई जान जाए इसे तो अच्छा पैसा दे के जान छुड़ाओ, तो सब लोग निकाल निकाल के दे रहे थे। और उसी डब्बे में वो बाबा का बच्चा बैठा था, उसके पास 20-25 हजार रुपए थे, कहीं सेवा में जा रहा था। तो वो बाबा को याद कर कह रहा, बाबा अब देखो ये पैसे तो आपकी सेवा के लिए हैं, और ये पैसे ऐसे कोई लेकर जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा। अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, ये आपके यज्ञ के पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। ऐसे उसने बाबा को दिल से याद कर रहा। तो सबसे निकलवाते पैसे और उसके पास भी आए, जो भी तुम्हारे पास है निकालो, नहीं तो भी हम आपको खत्म कर देते। वो कहने लगा हमारे पास तो क्या है, हम तो भगवान की सेवा में जा रहे हैं, तुम भी उसे जानो पहचानो और उसे याद करो। ऐसे कहकर उनको बाबा का ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। तो कहने लगा बोला मुझे को ज्ञान व्यान कुछ नहीं सुनना है, अब तू पैसे निकालता है या नहीं तो अभी मैं आपको मारता हूं। ऐसे कहकर जैसे उसने मारने के लिए दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाए, उधर उसने बाबा को दिल से याद कर कहा प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो। और जो दोनों हाथ उसने मारने के लिए ऐसे ऊपर उठाए थे, और जैसे ही उसने बाबा को याद कर कहा, वो हाथ उसके ऐसे के ऐसे रह गए जैसे किसी ने पकड़ लिए हो, वो उसको मार नहीं सका। दो मिनट के बाद नीचे कर लिए। फिर दो मिनट के बाद कहता है तू अभी पैसे निकालता है या नहीं तो मैं फिर आपको मारता हूं। तो फिर मारने के लिए ऊपर हाथ उठाए तो फिर भी उस भाई ने ऐसे ही बाबा को दिल से याद कर कहा प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो। तो फिर भी उसके हाथ ऐसे के ऐसे रह गए जैसे किसी ने पकड़ लिया, वो उसको मार नहीं सका। और उसने देखा कि ये तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो इसको छोड़ो लास्ट में देखेंगे, पहले बाकी बचे लोगों से तो निकलवाए। ऐसा सोचकर दूसरों के पास गया और दूसरों से निकलवाने लगा, तो उस समय बाबा उसको टच करता उसकी बुद्धि को, बच्चे ट्रेन से उतर जाओ ट्रेन से उतर जाओ। अब वो सोचने लगा भाई ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन में मैं कैसे उतरूंगा। तो उसको वो तो दूसरों से निकलवाने में बिजी था पैसे, तो वो धीरे धीरे खिसक कर और खिड़की की तरफ चला गया। और खिड़की उसने खोल के देखा तो कोई शहर है छोटा मोटा, लाइट जल रही है और गाड़ी ट्रेन बहुत धीमी हो गई है, और इतना ट्रेन धीमी हो गई है कि वो उतर सकता है आराम से। तो वो ट्रेन से उतर गया, और जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, वहां कोई स्टेशन नहीं है, जैसे ही वो ट्रेन से उतरा ट्रेन ने फिर स्पीड पकड़ ली। अब आप सोचो कोई उसके हाथ पकड़ ले, ट्रेन की स्पीड धीमी करा दे, ये सब क्या है, बाबा ही तो सब कुछ करा रहे हैं। तो ऐसे कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आए, यदि हम दिल से उसे याद कर कहेंगे तो तुरंत हमारी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। तो इस चीज की हमें जीवन में अनुभूति करनी है, कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, दो मिनट उसे याद कर, दिल से याद कर, उसे कहो बाबा बस आ जाओ आपकी मदद की आवश्यकता है। भले आपको कोई कार्य है, बहन जी मान लो आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो आपने कभी की नहीं हो, तो सोचेंगे ना हम ये सेवा कैसे करेंगे। लेकिन यदि आप बाबा की सेवा समझकर हां कर लेते हो तो बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करनी है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है, क्योंकि सेवा कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। अगर आपने ना कर दिया तो देखो उसका कार्य तो किसी के बिना रुकने वाला नहीं है, उसका भाग्य किसी और को मिल जाएगा। तो जहां हम सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलते हैं तो कैसे कदम कदम पर उसकी मदद मिलती है, और एक अनुभव स्वयं का ही। हम पहले में सुनाया है लेकिन यहां तो रोजाना ही कुछ न कुछ नए महान आत्माएं आते रहते हैं। तो एक बार जैसा कि बताया मुझे 43 इयर्स हो गए यहां रहते, तो ये उस समय की बात है जब शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था, केवल पांडव भवन ही था। तो सभी दादियां यहां रहती थी, बाबा भी वहीं आते थे, ओम शांति वन में यहां भी आए, उनसे मिले हम बाबा से। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों को क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो दादी ने मेरे को कहा आपको भाषण करना है। अब हम तो नई नई आए थे, एक साल ही लगभग हुआ था उस समय, तो दो शब्द भी किसी के आगे खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। अब दादी ने कहा तो हम ना भी नहीं कर सके, भाषण करना आता नहीं है इसलिए हां भी नहीं कर सके, चुपचाप सुन लिया। और मैं बाबा के कमरे में गया, मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा मेरे को दादी ने बोला है भाषण करना है, तो मैं कैसे भाषण करूंगा, मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। और ये भी याद कर बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप ही आना, आप ही भाषण कराना। और ऐसा नियोग लोग हंसी उड़ाए, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद कर कहके बोल दिया। और प्रोग्राम ऐसा था कि टॉपिक किसी को बताए नहीं जाएंगे, ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ, चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। और उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो हैं वो नहीं, कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। कई बार बच्चों को पेपर में क्वेश्चन देते थे ना, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, हैं तो कल्पना करके ही बोलेंगे ना। ऐसे ज्ञान योग के क्वेश्चन होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ, चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। तो तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। तो और उसमें नए नए लोगों को ही सिलेक्ट किया गया जिनको क्लास कराना भाषण करना नहीं आता था, क्योंकि उनको सिखाना है। तो सात बहनें सात भाई सब नए नए जिनको क्लास कराना भाषण करना नहीं आता था उनको ही सिलेक्ट किया गया, और उनमें से एक हम भी थे। तो रात के 8:30 बजे ओम शांति वन के स्टेज पर बिठा दिया गया है, दादियां दादे आगे बैठे हैं, और जिनको कुछ भाषण करना क्लास कराना नहीं आता तो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए, क्योंकि पहले तो बाबा का सीजन यही होता था ना, तो सीजन के समय ये प्रोग्राम हो रहा था। तो ओम शांति में उनका हाल फुल भरा हुआ था, सब दादे दादा आगे बैठे हैं दादियां, और जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। प्रोग्राम शुरू हुआ, तीन लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो बड़ा वंडरफुल टॉपिक निकला। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो एक तरफ तो पढ़ के हंसी आई, दूसरी तरफ विचार चले भाई इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े हैं, बोल रही अपने को है, तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया। मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद कर कहके बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कहके बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट टच होती गई और वो हम बोलते गए, और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं कि इसको दो शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला? अब बहन जी पूछ रही है क्या बोला आपने, वो अब वो सारी बातें तो मुझे याद नहीं रही है, तो मैं समझता हूँ 41-42 साल पहले की बात हो गई है, लेकिन जो बहनें करती हैं उस समय जो बाबा ने टचिंग कराया वो बोल दिया मुख से। तो सबसे पहली बात तो उसमें फर्स्ट नंबर आने का एक कारण ये रहा कि हमने ऑन द टॉपिक बोला, और सबसे पहले ये बात कि मन से हमने 3 मिनट के लिए स्वीकार कर लिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। अब भाई हैं तो देखो भाई की बोल टोन में बोलने की आदत है, लेकिन टॉपिक ऐसा मिला तो मन से जब ये स्वीकार कर लिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, तो फिर मुख से वैसा ही बोल निकला कि यदि मैं ब्रह्मा कुमारी होती तो सेंटर की रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी बना के रखती, अच्छे अच्छे भाई बहनों की पार्टी लेके मधुबन आती, दादी से मिलाती, बाबा से मिलाती, और योग शिविर कराने के लिए भी आती। और उस समय देखिए बाबा ने पॉइंट टच कराया, उस समय कुमारियों की ट्रेनिंग हो रही थी यहाँ, तो मैंने कहा यदि दादी जी कहती तो मैं कुमारियों की ट्रेनिंग में भी क्लास कराती, और ऐसा क्लास कराती कि जो हर एक कुमारी ये कहे कि दादी जहां भेजेगी हम वहीं जाएंगे, फिर आज जो सेंटरों पर टीचर्स की कमी है वो पूरी हो जाती। तो इस तरह से ऑन द टॉपिक बोला तो इसलिए उसमें फर्स्ट नंबर आया। और ये सब कमाल तो बाबा की, हमने तो मन से बाबा को अर्पित कर दिया। मैंने कहा बाबा भी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, तो उसने जो उस समय टच किया वो मुख से निकला और इसलिए उसमें फर्स्ट नंबर आया। और उस दिन के बाद समझो हमारा क्लास कराने का, भाषण करने का प्रोग्राम शुरू हो गया, बाबा ने एक कला भर दी। तो कहने का भाव यही है कि कभी भी कोई बड़े कहें कुछ भी कार्य के लिए या सेवा के लिए, तो कभी ना नहीं करनी है, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलना है, तो कदम कदम पर सफलता मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना निरंतर इमर्ज रूप में रहेगी। देखो अगर मान लो ये ज्ञान तो सबको है, लेकिन कितना रहती है हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, वो हर एक हम जानते हैं अपने आप को। अगर जरा भी कहीं किसी भी कारण से हमारे मन में किसी के प्रति नेगेटिव भावना आती है तो वो नेगेटिव भावनाएं तुरंत आपकी स्थिति को भारी कर देंगी, मन को विचलित करेंगी, योग में एकाग्र नहीं होने देंगी, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेंगी। वैसे तो और भी बहुत सारे कारण हैं विघ्नों के, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि अगर कहीं ऐसा हो रहा हो, आपका योग नहीं लग रहा हो, फिर संकल्प चल रहे हो, मन एकाग्र नहीं हो रहा हो, योग में कुछ अनुभूति नहीं हो रही हो, तो चेक करो कि मेरे मन में किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना तो नहीं है। आज संसार में और भी समस्याओं के कारण है, लेकिन एक बड़ा कारण अनेक विघ्न परिस्थितियों का यह है कि मनुष्य के मन की नेगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बदले की भावना, इस कारण कितनी सारी समस्याएं बनी हुई है आज की। तो हमें कोई कुछ भी कहे, कैसा व्यवहार हमारे से करे, लेकिन हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना यदि रहती है, लेकिन ये कब रहेंगी, सहज बात तो नहीं है। एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघ्न डालता है, डिसरिगार्ड करता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? रहती है शुभ भावना या बदल जाती है? प्रैक्टिकल में क्या होता है वो बताओ। इसमें दोनों ही प्रकार के आंसर सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते रहती हैं और ज्यादातर लोग कहते हैं कि भावनाएं बदल जाती हैं। तो देखो, अगर हमारे मन की भावनाएं बदल गई गलत व्यवहार को देखकर, तो उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेगी और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी, तो उसकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देगी, मन को विचलित करेंगी, योग में एकाग्र नहीं होने देंगी, पुरुषार्थ में विघन रूप बनेगी। तो इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमारे मन में जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बदले की भावना ना आए। और वो कब नहीं बदलेंगी हमारे मन की भावनाएं, उसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। फर्स्ट ज्ञान, दूसरा योग का बल इमर्ज रूप में रहना चाहिए। ज्ञान योग का बल इमर्ज रूप में रहेगा तो भावनाएं नहीं बदलेगी, अन्यथा साधारण स्थिति में तो भावनाएं बदल ही जाती हैं ज्यादातर लोगों की। तो जहां हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रहती है, तो उनमें भी इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके आधार से भी आप कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हो। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है, वो शुभ भावना, शुभ कामनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, ज्यादातर माताएं ज्यादा बैठी हैं, टीचर बहनें बैठी हैं, कोई मान लो स्टूडेंट कहना नहीं मानता है, डिससर्विस करता है, श्रीमंत का उल्लंघन करता है, और कोई विघ्न डालते हैं, कहने के बाद भी नहीं समझता, क्या करेंगे ऐसी आत्माओं के लिए? उसका सबसे सुंदर तरीका है अमृत वेले योग में उस आत्मा को इमर्ज कर और बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके उस आत्मा को दो। तो उस समय हम सभी का अंतर्मन जागृत होता है, तो जिस आत्मा को भी हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं, और उसका अंतर्मन जागृत है तो उन वाइब्रेशंस को सहज ही कैच कर लेगा और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। इसलिए ये प्रयोग अमृत के लिए करें। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक माता, ज्यादातर माताएं बैठी, कई माताओं के पति ज्ञान में नहीं चलते हैं, विघन डालते हैं, रुकावट डालते हैं, कई भाइयों की युगल ज्ञान में नहीं चलती, वो विघन डालती हैं, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है या विघन डालता है, तो ऐसी आत्मा की मनोवृत्तियों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, ये प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई थे, बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनका बड़ा बिजनेस था, उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना, इतना विरोध करती थी। लेकिन उनका बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था, तो बाबा के सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे। तो वो भाई एक बार मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, और एक रात ऊपर पांडवन में भी रुके, क्लास के बाद हमारे से मिले, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि भाई साहब मेरी युगल बहुत विघन डालती है, रुकावट डालती है, ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं? तो हमने उन्हें बताया कि आप यदि अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो तो आज से ही दो बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। पहली बात, चाहे आपका वो कितना भी विरोध करे, लेकिन एक तो अपने मन में उस आत्मा के प्रति कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना रखकर चलना है। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्यों करना है वो तो मैंने बताया, कैसे करना है वो मैं बतला रहा हूं कि जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, उसको सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो, और इमर्ज कर बाबा से ऐसी शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके उसको दो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी हो। ऐसे इनका बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके देना, और वो बात भी उस समय बता देना जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे में इनका 7 दिन अमृत वेले योग में अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर और बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके देना और बताना ऐसा उसका रिजल्ट क्या होता है। वो यहां से चले गए। जाने के बाद और अमृत वेले उठकर अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर और बाबा से ऐसी शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके दिए कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, और वो बातें उस समय बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया अमृत वेले योग में शुभ भावनाओं का। 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो उसने सोचा योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है, तो मैंने 2 दिन तो शुभ भावनाओं का प्रयोग किया ही तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उसे पता चल जाएगा कि शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वह ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से विकनों के सामने ऐसी परिस्थिति हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन और शुभ भावनाओं के प्रयोगों को सुनाने के अनुभव सुनाने से पहले एक और पिछले पॉइंट का अनुभव मुझे याद आया। अगर बाबा को हम साथी बना के चलते हैं, इस बात से भी कनेक्टेड है, अब अगर हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावनाएं रहती है, मन शुभ भावना कई प्रकार की होती है ना, उसमें बाबा ने लगभग ज्यादातर बाबा ने 5 प्रकार की भावनाएं बताई। शुभ भावना, कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग की भावना और निस्वार्थ भावनाएं। अगर हमारे मन में सभी प्रकार की भावनाएं हैं तो वहां पर भी आपको कदम कदम पर बाबा से सहयोग की अनुभूति होती रहेगी। फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। एक लेटेस्ट का पहले भी सुना है मैंने, एक लेटेस्ट का वंडरफुल अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए तो बहन जी को पूछा भाई कितने भाई बहन होंगे भट्ठी में, तो बहन जी ने कहा 75 के अंदर ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो 75, तो हमने मधुबन की 75 टोली तोसा उनको दे दिया। भट्ठी शुरू हुई, भट्ठी पूरा होते होते और लास्ट में 85-90 के अंदर भाई बहन पहुंच गए, 85-90 के आसपास। मुझे इस बात का मालूम नहीं कुछ, हम तो क्लास करा रहे थे, योग करा रहे थे। वो बहन जी ने गिनती किए तो उन्होंने और 15-20 पीस टोली के बनाकर रख लिए, भाई वो टोली कम पड़ेगी तो भाई जी से ये टोली दिला देंगे। और भट्ठी पूरा होने के बाद अनाउंसमेंट किया भाई सभी भाई जी से टोली लेने के लिए आएंगे। भाई बहने लाइन में आते जा रहे हैं, हम बाबा की याद में टोली देते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। लास्ट में मैंने देखा कि जब 5-6 पीस टोली के बचे हैं और भाई बहनों की लाइन थोड़ी लंबी लग रही है, ज्यादा लग रहे हैं, तो मैंने उसी समय दिल से बाबा को याद कर कहा बाबा अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, ये मधुबन की टोली कम नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे हमने दिल से बाबा को याद कर कहा, क्योंकि सेंटर की टोली तो अपने वहां के तो सब खाते रहते हैं, लेकिन मधुबन की टोली तो भाई सबको एक विशेष बात हो जाती है ना, तो सबका दिल करता है भाई मधुबन की टोली हमें मिले हैं। तो ऐसे हमने दिल से बाबा को याद कर कहा, मैंने कहा क्या हो सकता है वो आप देख लेना, ये मधुबन की टोली कम नहीं पड़नी चाहिए, मुझे भाई बहन ज्यादा लग रहे हैं। ऐसे हमने मनी मन दिल से बाबा को याद कर कहा और उसके बाद उसी में से भाई बहने आते जा रहे, हम टोली देते जा रहे, आते जा रहे, देते जा रहे, लेकिन मैं फील कर रहा हूं कि टोली कम नहीं हो रही है। कोई योग युक्त स्थिति में कोई चीज आप देखो तो उसका स्पष्ट रूप तो नजर नहीं आता है ना, थोड़ा धुंधला सा रूप नजर आता है, तो मैं फील कर रहा हूं कि टोली कम नहीं हो रही है। उसी में से हमने सबको टोली खिला दी और 3 पीस और बच गए और लास्ट में बहन जी बोल लगी भाई जी आपने तो कमाल कर दिया, 75 में से 85 लोगों को टोली खिला दी और 3 पीस और बचा लिए। मैंने कहा कमाल हमारी नहीं है, ऊपर वाले बाबा की है, वो जादूगर है तो क्या नहीं कर सकता वो है, लेकिन वो करेगा तभी हम दिल से जब उसे याद कर कहेंगे। सबके लिए हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना होगी तो कदम कदम पर उसकी मदद मिलती रहेगी। कैसे? हम अपने मन की शुभ भावनाओं के आधार से एक नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। सुनिए एक और प्रैक्टिकल का अनुभव। एक घर में एक सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी, रोजाना उल्टा सीधा बोलती, डांटती, फटकारती, तू ऐसी है वैसी है। तो ऐसा व्यवहार देखकर बहू बड़ी परेशान हो गई और परेशान होकर पड़ोस की माता के पास गई कि माता जी, मेरी सासू मुझे रोजाना कुछ न कुछ बोलती है, उल्टा सीधा डांटती फटकारती है, मैं बहुत दुखी परेशान हो गई हूं, तो कोई विधि बताओ मैं कैसे उससे मुक्ति पाऊं। तो पड़ोस की माता ने सलाह दी कि जो आप भोजन बनाते हो ना, उसमें दो बूंद जहर की डाल के खिला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और माता जी की छुट्टी, सदा के लिए आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो बहू ने प्लान बना लिया और उसी दिन मार्केट में वो कुछ खरीदारी करने के लिए गई। तो जिस दुकान पर वो खरीदारी करने के लिए गई, उस दुकान पर उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई। तो जो सहेली थी उसकी, वो इस बाबा के ज्ञान में चलती थी। तो बातचीत करते करते और उससे नहीं रहा गया, तो उसने अपना सारा प्लान अपनी सहेली को बता दिया। तो मैं तो माताओं बहनों की विशेषता ही कहूंगा कि वो कोई बात अपने मन में रख नहीं पाती है, जल्दी से दूसरों को बता देती हैं। तो इस विशेषता का फायदा शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में उठाया। तो सबसे पहले ज्ञान देने के लिए बहनों को ही निमित्त बनाया, ताकि जल्दी से भगवान का ज्ञान वो सबको सुना दे। ठीक बात है ना। जो कई भाई बहन पूछते हैं ना आप लोगों से, भाई ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहने ही ज्ञान क्यों सुनाती हैं, तो उसका एक कारण ये है, है? तो उसने अपना सारा प्लान अपनी सहेली को बता दिया। तो सहेली थी बाबा ज्ञान में चलती थी, तो उसने उसको पहले तो कहा कि आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान आप आज से एक महीने के बाद प्रैक्टिकल करना, और आज से मैं जैसे बताते हूं आप वैसे करो। तो बोल ठीक है, बताइए करेंगे। तो बोल ऐसा करो कि आप अभी से अपने मन की भावनाओं को चेंज कर दो अपनी सासू के प्रति, उसकी गुण विशेषताएं देखो, उनका सम्मान करो, इज्जत दो, उसके प्रति शुभ भावना रख के चलो। तो वहीं से उसने चेंज कर दिया, मेरी सासू बहुत अच्छी है, उनके अंदर गुण विशेषता, उनका सम्मान करने लगी, इज्जत देने लगी। तो ऐसे व्यवहार को देखकर जो सासू के मन की भावनाएं थी बहू के प्रति, वो भी धीरे धीरे परिवर्तन होती चली गई कि ये मेरी बहू में तो बहुत अच्छी है, तो बनती जा रही है, मेरा सम्मान करती है, आगे रखती है, इज्जत देती है। तो जब बहू ने सासू के प्रति ऐसा अच्छा व्यवहार किया शुभ भावना युक्त, तो उसके परिणाम स्वरूप सासू ने बहू के प्रति अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब एक महीने तक दोनों ने एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार किया, तो जो मरने मारने की बात थी वो तो खत्म ही हो गई और दोनों का जीवन सुख शांतमय बन गया। लास्ट पॉइंट, हमारी शुभ भावनाओं का कनेक्शन हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। अगर आपके मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है, आप पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्नति करते जा रहे हैं, तो ऐसी आत्मा की बुद्धि में कर्मों की गुहे गति का ज्ञान भी स्पष्ट रूप से इमर्ज रूप में रहेगा। तो किसी भी कर्म को देखकर मन में प्रश्न नहीं उठेगा, गलत व्यवहार को देखकर, विघन समस्या परिस्थिति को आते देखकर कभी मन में प्रश्न नहीं उठेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सामने विघन क्यों आ रहे हैं, मेरे को सब क्यों बोलते हैं, मेरे सामने मेरे साथ ही बार बार मेरी तबीयत खराब क्यों होती है, उठते हैं ना कईयों के प्रश्न ऐसे हैं। अगर कर्मों की गुहे गति का ज्ञान इमर्ज रूप में है, तो वहां ये सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ज्ञान तो है लेकिन इमर्ज रूप में नहीं है, इस कारण परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाते हैं, हलचल ना रहे। तो कर्मों की गुहे गति का ज्ञान बाबा ने क्या दिया है, आज जिसके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके कर्मों के हिसाब किताब अनुसार ही हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए बाबा ने हमको ड्रामा का भी ज्ञान दिया, बच्चे ड्रामा एक्यूरेट बना है, जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है, वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकत होना है, तो फिर क्या क्यों का प्रश्न उठाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर भी उठते तो हैं प्रश्न लोगों के, तो जिनके प्रश्न उठते होंगे तो इस अनुभव से सब वो खत्म हो जाएंगे। तो एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक जगह हम एक कोई भाई एक जगह, थोड़ा मिस हो रहा है, एक चलो दूसरा सुना देते जब तक याद आएगा फिर सुनाएंगे। तो कर्मों की गुहे गति के ज्ञान में एक बार क्या हुआ कि एक भाई जा रहे थे कहीं, तो नहीं अभी मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरा अनुभव सुना देते हैं, जब याद आएगा फिर सुनाएंगे, लेकिन अनुभव बहुत ही अच्छा है वो। तो एक बार शुभ भावनाओं का अनुभव सुना देते हैं, दूसरा तो एक जगह पर एक माता का फोन आया, भाई जी उन्होंने प्लाट लेकर डाला हुआ था, तो वो मकान बनाना चाहती थी, लेकिन उनके प्लाट के साथ एक व्यक्ति ने मकान बनाया हुआ था पहले से, तो उसका उसको बताया गया कि माता जी ये शहर का नंबर वन गुंडा आदमी है, अगर आपने मकान बनाया तो ये मकान भी नहीं बना देगा और प्लाट भी आपसे ले लेगा। तो उस माता ने मेरे को फोन किया, जानती थी भाई जी ऐसे से बात है, अब बाबा से पूछ के बताओ हम प्लाट बनाए मकान बनाए या ना बनाए, जैसे कि हम ही उसके लिए संदेशी हैं। तो अब यहाँ आंगन में बैठते हैं बाबा के कमरे के साथ, तो हमने बाबा को कमरे में जाके बताया भाई फलाने जगह की माता ऐसे से पूछ रही है, बाबा उसको क्या जवाब दे। तो बाबा ने हरी झंडी दिखा दी, तो मैंने कहा बनाऊं, लेकिन उसके पहले 7 दिन अमृत वेले योग में उस आत्मा को इमर्ज कर बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके देना, कि बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि मिले, इसका कल्याण हो और ये हमें मकान बनाने में सहयोग करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रही हूं, बाबा इसको सद्बुद्धि मिले, इसका कल्याण हो और ये हमें मकान बनाने में सहयोग करे। तो ऐसा इनका 7 दिन अमृत वेले योग करने के बाद आप मकान बनाना शुरू करना। तो बोल ठीक है, उसने ऐसे योग करना शुरू किया, करती गई 2 दिन योग करने के बाद 3रे दिन उसके उसका फोन आ गया, भाई जी कमाल हो गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई कमाल? बोल 3रे दिन ही मैंने 2 दिन ही योग किया, 3रे दिन ही मेरे पति के पास उस व्यक्ति का फोन आया, भाई आप लोगों ने इतने दिन से प्लाट लेकर डाला हुआ है, मकान क्यों नहीं बना रहे, आप मकान बनाओ मैं मदद करूंगा आपको। तो इस तरह से यदि हमारे मन में सर्वात्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहती है, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है वो कैसी भी नेगेटिविटी वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगे। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चले तो कदम कदम पर आपको सफलता मिलती रहेगी। अब आप सोचेंगे विघन परिस्थितियां तो हर एक के सामने आती हैं, तो हम भी प्रयोग करें, जरूर करो, लेकिन मैं शॉर्ट में बतला रहा हूं, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं और फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात, हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए, जो कि मैंने कल वाली क्लास में बताया। दूसरा, जैसी समस्या जैसी परिस्थिति वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। कहीं दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुखहरता सुख करता हूं, कहीं शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए हम निरंतर अपने मन में सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना कल्याण की भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। चौथी बात, निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही स्थान पर एक ही समय रोजाना बैठ के योग करें जितने दिन करना हो। और पांचवी बात है पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति। इन 5 बातों को हम अपने स्थिति में लाएं और फिर योग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को आप अपने पुरुषार्थ में ऐड कर चलेंगे, या जैसे जैसे पुरुषार्थ में उन्नति होती जाएगी तो ये सब बातें आती जाएंगी। इस आधार से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ में आगे जा रहे हैं या वहीं खड़े हैं। ओके, ओम शांति।
शांति। सभी भाई जी का ताली बजाकर थैंक यू करेंगे। बहुत अच्छे से अपने सुंदर सरल स्वाभाविक स्वरूप से इतना अच्छा अनुभवों की मालाएं हमें पहनाई। अच्छी श्रृंखला बोलते हैं ना, अनुभवों की श्रृंखला से हमें श्रृंगारित किया। और आप सबके लिए दो लाइन में गा लूंगी, ठीक है? सुनो प्रभु के प्यारो बाबा के दुलारो, सुनो प्रभु के प्यारो बाबा के दुलारो, तुम्हें लौट आना तुम्हें लौट आना, ये मधुबन की गलिया ये दुनिया पुकारे, तुम्हें लौट आना।